بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. اس سورت کا نام ہے الغاشیہ. اس میں فاعل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے جس کے معنی آتے ہیں چھا جانے کے، اور قیامت کو غاشیہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایسی ہولناک اور بھیانک ہوگی کہ تمام مخلوق کے اوپر وہ چھا جائے گی. اس کی ہولناکی تمام مخلوق کے اوپر چھا جائے گی، اس حساب سے اس کو غاشیہ کہتے ہیں. اور سورت کی پہلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا نام غاشیہ رکھا گیا ہو. 67 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، سورہ زاریات کے بعد سورہ کہف سے پہلے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی دوسری رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے، یہ حدیث پاک میں آیا ہے. ربط اس کا اس طریقے سے ہوگا کہ سابقہ سورت میں تسلی کا بیان ہے اور آخرت کے کچھ مناظر کا تذکرہ ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، تو یہاں پر آخرت کی تیاری کا بیان ہے کہ تم آخرت کے لیے تیاری کرو. ایک عورت اس سورت کو پڑھ رہی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سنا حضور نے قرآن کی آواز آ رہی ہے تو رک گئے، اور آپ نے اس عورت کی تلاوت کو سنا، وہ سورہ غاشیہ پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل اتاك حدیث الغاشیہ؟ نعم قد جانی، یعنی ہاں میرے پاس وہ غاشیہ یعنی قیامت کی خبر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس عورت سے اس پوری سورت کو سنا. جو شخص خواب کے اندر اس سورت کو پڑھے تو اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اس کا علم دنیا کے اندر پھیلے گا، لوگ اس کے علم سے خوب استفادہ کریں گے. حل آیا سورت کے شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حل کو علامہ محلی نے قد کے معنی کے اندر لیا، یعنی پکی بات یہ ہے کہ چھا جانے والی چیز یعنی قیامت کی خبر آپ کے پاس آ چکی. بعض حضرات نے اس کو استفہام کے معنی کے اوپر باقی رکھا ہے، تو استفہام بھی تو تقریر کے معنی میں آتا ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس قیامت کے دن جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دبے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے. چہرے بول کر کے پوری ذات کو مراد لیا گیا ہے، اور چہرے کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ بدن کے تمام اعضاء کے اندر افضل ترین چہرہ ہے، اشرف ترین چہرہ ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ناگواری اور خوشی کے آثار سب سے پہلے چہرے کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں، دوسرے اعضاء کے اوپر اس کا اثر بعد میں ہوتا ہے، لیکن ناگواری اور خوشی کا سب سے پہلا اثر چہرے کے اوپر ہوا کرتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس کو وجوہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہو، ایسی حکمت سمجھ میں آتی ہے. مراد ہے کافروں کے چہرے، کافروں کے چہرے ذلیل ہوں گے، نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عاملہ کے معنی کام کرنے والے، محنت کرنے والے، नासिका नासिबा के माने थके हुए, यानी थके हुए चेहरे होंगे या एक सख्त मेहनत झील रहे होंगे, सख्त मेहनत झील रहे होंगे। और वो कैसे झूलेंगे? क्योंकि उनको जंजीरों से बांधा होगा, बेड़ियों में जकड़ा हुआ होगा, इस वास्ते बेड़ियों और जंजीरों की वजह से इन लोगों को मशक्कत और तकलीफ हो रही होगी। चुनांचे इस आयत के मुताल्लिक बाज़े मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये तो कयामत का मंजर है कि कयामत के दिन काफिरों के चेहरे ऐसे लगेंगे कि बहुत थके हुए हो, या ये कि मेहनत मशक्क़त झील रहे हो, उनको जंजीरों से बांधा गया होगा उसकी वजह से। लेकिन बाज़ हज़रात की राय ये है कि इसका ताल्लुक दुनिया से है। दुनिया से उसका ताल्लुक इस तरीके से होगा कि बहुत सारे लोग दुनिया में रियाजतें करते हैं, मुजाहदात करते हैं, मेहनतें करते हैं और मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन वो दीन हक पर न होने की वजह से उनकी मेहनतें अकारत होती है, बेकार जाती है। चुनांचे बहुत से मजहब वाले अजीब अजीब मुजाहदे करते हैं, अजीब अजीब मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, ज़िंदगी भर नहाते ही नहीं। ऐसा मुजाहदा भी है बास मजहबों के अंदर, कभी सवारी में सवार होते ही नहीं, ऐसे भी मुजाहदे हैं। दुनिया की लजीज चीज़ें खाते ही नहीं, लेकिन दीन हक पर न होने की वजह से ये सब मेहनतें उनकी बेकार। ना तुसला तुसला नारन हामिया, वो सख्त आग में झुलस रहे होंगे, दाखिल किए जाएंगे आग में, जो आग बहुत तेज गर्म होगी। मुराद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते, आग तपाई जाएगी और अल्लाह ताला दुश्मनों पर, अल्लाह के दुश्मनों पर आग को भड़का दिया जाएगा। ये भी कयामत का एक मंजर है। तुस्का मिन आइनिन आनिया, इनको पानी पिलाया जाएगा सख्त गरम चश्मे से। आनिया का एक माना है शदीद गरम, रिवायतों में उसकी तौजीह आई, उस चश्मे का थोड़ा सा पानी दुनिया के किसी पहाड़ पर डाल लो तो पूरा पहाड़ पिघल जावे, ऐसा शदीद गर्म पानी होगा। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि आनिया कहते हैं जिसके ऊपर हरारत की कोई डिग्री ही न हो, हरारत और बुरुदत को नापने की डिग्री होती है, तो इसके ऊपर कोई डिग्री ही न हो, इतना सख्त गर्म को आनिया कहते हैं। लैसा लहुम ताम, उनके लिए कोई चीज़ खाने को नहीं मिलेगी जहन्नम की आग में, इल्ला मिन दरीअ, मगर सिर्फ दरीअ का खाना उनको मिलेगा। दरीअ एक घास है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, उसको शिबरिक कहा जाता है। जब ये घास ताज़ी होती है तो बाज ऊँट उसको खाते हैं, और सूख जाते हैं तो जहर बन जाता है, ये जहरीला पौधा हो जाता है, कांटेदार हो जाता है। तो उनके लिए सिर्फ दरीअ का खाना होगा जो सूखने के बाद जानवर भी खाते नहीं हैं, तो मुतलकन इसको कोई जानवर खाता नहीं है। बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ एक इश्काल पैदा किया कि यहाँ नफ़ी आई और इस्तिस्ना आया, जो हसर के ऊपर दलालत करता है कि उनके लिए सिर्फ दरीअ का खाना होगा और कोई खाना नहीं होगा। हालांकि दूसरी आयत में सराहत है कि जक्कूम भी खिलाया जाएगा, इसीलिए बाद हजरात ने इस इश्काल से बचने के लिए यूं कहा कि जो दरीअ है वही जक्कूम, जो जक्कूम है वो दरीअ, दोनों एक ही चीज़ है। और बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि यहाँ जो नफ़ी और इस्तिस्ना आया है उससे हसर हकीकी मुराद नहीं है बल्कि हसर इजाफी मुराद है। क्या मतलब हुआ? कि खाने के लायक उनको कोई गिज़ा नहीं दी जाएगी, दिया भी जाएगा तो दरी दिया जाएगा, जक्कूम दिया जाएगा जो ना काबिले अक्ल हुआ करता है। ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जूर, जो खाना उनको मोटा भी नहीं करेगा और जो भूख को मिटाएगा भी नहीं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे खाने के दो अगराज का पता चला। खाना खाने की एक गर्ज है मोटापा, खा खा के आदमी भैंसा बने, और दूसरा जो है इसका मकसद है भूख को मिटाना। अगर खाने से दोनों मकसद हासिल न हो तो वो खाना कोई मतलब का नहीं है। लायुस्मिनु वला योगनी मिंजो नाइमा। बहुत सारे चेहरे उस दिन खूबसूरत तरोताज़ा चमकते दमकते होंगे। लिसाइहा रादिया, अपनी मेहनत के ऊपर वो खुश होंगे। दुनिया के अंदर जो उन्होंने मेहनत की, जो आमाल किए अल्लाह की इताअत की, उसके ऊपर वो लोग बहुत खुश खुश नजर आएंगे। फी जन्नतिन आलिया, ऊंची ऊंची जन्नत के अंदर होंगे। जिस तरीके से ऊपर वजूह से पूरा बदन मुराद लिया, इस तरीके से यहाँ पर भी वजूह खास और उमूमन पूरे बदन पर ही अवसाब जाहिर होंगे। फी जन्नतिन आलिया, ऊंची जन्नत के अंदर होंगे। ला यस्मऊ फीहा लाग़िया, जन्नत में बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, जन्नत में दिल खराश बात नहीं सुनेंगे, कोई ऐसी बात नहीं सुनने की मिलेगी जो लगव हो, कोई ऐसी बात नहीं सुनने मिलेगी जो बेहुदा हो, कोई ऐसी बात नहीं सुनने मिलेगी जिसके अंदर बकवास होती हो, दिल खराशी होती हो। फीहा आइनुन जारिया, जन्नत के अंदर जारी चश्मे होंगे। फीहा सुरुरुम मरफुआ, उसके अंदर चारपाइयां होगी, तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे के, उन चारपाइयां उनके तख्त की उनकी कदर कीमत भी बहुत ऊंची होगी, यानी बड़े कीमती होंगे और उनके मकामात भी बहुत ऊंचे होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पलंग होंगे। वह अकवाबुम मौदो आह, खूब ऐसे पानी के बर्तन को कहते हैं कि जिसके अंदर कड़ी भी न हो पकड़ने की, हैंडल भी न हो, और आगे वो टोटी भी निकली हुई न हो, उसको कहते हैं कूप, जैसे गलास इस तरह की चीजें। और प्याले, तो उसके अंदर प्याले सामने रखे हुए होंगे, यानी पीने के लिए तैयार भरे हुए, चलो चल हाथ में लो ने पी डालो, इस तरीके के होंगे। इससे मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता निकाला कि जहाँ पानी हो वहाँ पानी पीने का बर्तन भी हो, तो पानी पीने में सहूलत रहेगी। बाकी पानी है और बर्तन नहीं है तो तकलीफ होगी पानी पीने के अंदर। मौदुआ से एक दूसरी बात ये भी निकाली कि पानी पीने के लिए जो बर्तन होता है उसको पानी पी के वहीं रखना चाहिए, ये नहीं कि वो बर्तन तुम ले जाकर दूसरी जगह रख दो, अब कोई आदमी पानी पीने आएगा तो उसको तकलीफ होगी। इसी तरीके से हर वो चीज़ जिसको पूरे मकान के रहने वाले सब अफराद इस्तेमाल करते हैं, या एक ऐसी चीज़ें के जिसको आम इस्तेमाल की हो, उसको इस्तेमाल करने के बाद उसी जगह पर रख देना चाहिए, ये आदाब के कुबेल से है। अब कूलर पर जो गलास है वो आप लेकर के दरसगाह में ले आएंगे तो कूलर पर आने वालों को तकलीफ होगी, वहीं पियो वहीं रख दो। यही हाल घर में भी है कि जहाँ चम्मच रखी जाती है वहीं रख देने की ताकि इस्तेमाल के वक्त तकलीफ ना हो, छुरी जहाँ रखी जाती है वहीं रखने की ताकि दूसरे अफराद परेशान ना हो। वनमारिको मसफूफा, और गांव तकिए कतार में रखे हुए होंगे, वो गोल ढोलके जैसे, वो गांव तकिए बिछे हुए होंगे जिसके ऊपर टेक लगा करके बैठेंगे। वज़राबियु मबसूसा, और कालीन बिछी हुईयां होगी, बेहतरीन कालीन बिछी हुईयां होगी। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, अब ये तौहीद की बातें फिर जिक्र की जा रही है, और यहाँ पर जो तौहीद के सीधे सादे दलाइल है वो अरबों के एतबार से हैं, क्योंकि अरब लोग बदवियाना जिंदगी गुजारते थे, और बदवियाना जिंदगी के अंदर सफर के लिए ऊंट जंगल में पड़ाव डाला तो नीचे जमीन ने ऊपर आसमान, यही उनके लिए नजारे की चीज, उसमें अल्लाह अपनी तौहीद समझा रहे। अफला यंजुरून, क्या वो लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते कि अल्लाह ने उसको किस तरीके से पैदा फरमाया। अजीबुल गरीब मखलूक है, खाने के काम में भी आता है ऊंट, उसका दूध भी पिया जाता है, उसके ऊपर सामान भी लादा जाता है, उस पर सवारी भी होती है, दूर दूर के शहरों में भी उसको ले जा सकते हैं और उसको गीजा के तौर पर ताज़ा चारा मिले कि सूखा चारा मिले, कांटे वाला मिले बगैर कांटे वाला मिले, सब वो खा लेता है। और जंगलों के अंदर पानी की भी जो है उसके अंदर बड़ी टंकी होती है, 10-10 दिन तक ऊंट को पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ने कुदरती उसके बदन के अंदर पानी की एक टंकी बना दी है। और उसको चलाने वाला बड़ा आदमी है तो भी चलता है, छोटा बच्चा हो तो भी उसको लेकर के चला लेता है, हर एक जो है उसको चला लेता है। अजीबोगरीब ये मखलूक है। फिर ये है कि बारी सुबहानहू व ताला ने उसका मिजाज ऐसा बनाया कि उम्दा आवाज़ वो सुनता है तो मस्त हो जाता है। चुनांचे हुदी ख्वां लोग जो होते हैं वो रातों में ऊँटों को तेज चलाने के लिए सुरीली आवाज़ से हुदी पढ़ते हैं तो ऊँट मस्त होकर के तेज भागता है, हालांकि उसका दिल बहुत सख्त है, कीनाखोर जानवर भी है, तुमने कभी उसको मारा तो वो याद रखता है और मौका पाएगा तो मालिक पर हमला भी करने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ उसके दिल में ये कैफियत है वहाँ वो कैफियत भी है कि हसीन आवाज़ से वो मस्त होकर के झूम के दौड़ता और भागता है, ये भी इसकी एक तासीर। अब इतना बड़ा जानवर तो उसके ऊपर सवारी करने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़े, टेबल की ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पैर में 3 मोड़ है। आम मतन जानवरों में 2 मोड़ होते हैं, हमारे अंदर भी 2 मोड़, लेकिन उसके अंदर 3 मोड़ होते हैं, इसकी वजह से वो पूरा नीचे बैठ जाता है और बच्चा भी उस पर सवार हो जाए फिर वो खड़ा हो जाता है। वैल समाई कई फरुफियात, आसमान की तरफ देखो तो कैसे अल्लाह ने उसको बलंद किया। वैल जिबाल कैफ नुसिबत, और देखो तो पहाड़ को कैसे पहाड़ जमा दिए गए। वैल अर्द कैफ सुतिहत, देखो तो जमीन को कैसे बिछा दी गई। चुनांचे इस मनाजिर को देख करके अल्लाह की कुदरत का यकीन पैदा करो। और मुफस्सिर कहते हैं कि ज़मीन के लिए यहाँ बिछाने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्या मतलब कि ज़मीन गोल नहीं है जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, बल्कि ज़मीन बिछी हुई है। वो या शरीयत के अंदर इस सिलसिले में कोई सरीह वजाहत नहीं है कि ज़मीन बिछी हुई है या ज़मीन गोल है कैसी है, और ये शरीयत का मौजू भी नहीं है, इसलिए कि ये सब चीज़ें शरीयत के इसमें नहीं आती। शरीयत तो इंसान को दुनिया में अल्लाह के अहकाम की रहबरी करती है जो आखिरत में उसको काम आए। अलबत्ता सुतिहत से ये बात निकाली कि ज़मीन बिछी हुई है, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ये फरमाते जैसे कि इमाम राज़ी वगैरह कि बहुत बड़ी गोलाई वाली चीज़ हो तो वो भी अपने बड़े होने की वजह से बिछी हुई मालूम होती है। तो बिछा हुआ होना और गोल होना इसमें कोई मनाफात नहीं है। और तीसरी राय खुद मुफस्सिर ने नकल कर दी कि इसको गोल मानो के बिछी हुई मानो, इससे शरीयत के किसी रुकन पर असर नहीं पड़ता, उससे अकीदे के ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। तुम्हारी मर्जी, गोल मानो कि दुनिया गोल अंदर से पोलम पोल, या ये कि उसको बिछी हुई मानो, अकीदे में और अहकाम शरीयत में कोई फर्क नहीं पड़ता। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को नसीहत करते जाइए, अल्लाह ताला के दलाइल तौहीद बताते जाइए। इन्नमा अंता मुज़क्किर, आपको अल्लाह ने नसीहत करने वाला बना के भेजा है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, सीन के साथ हिशाम पढ़ते हैं और खल्लात जो है वो जा के साथ इश्माम करते हैं, बिमुसैतिर पढ़ते हैं, और बाकी हजरात स्वाद के साथ पढ़ते हैं, उसमें हब्स भी आ गए। बिमुसैतिर, آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے بھیجے گئے نہیں ہیں. آپ نصیحت کر دو اور چھوڑ دو, عمل کرنا ہو تو کرے, نہ کرنا ہو تو نہ کرے. الا من تولى وكفر, مگر جو آدمی ایمان سے اعراض کرے اور کفر کرے, قرآن کا انکار کرے, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بھاری عذاب دیں گے آخرت میں. اکبر کے مقابلے میں اصغر عذاب دنیا میں ہوگا کہ ان کو غزوات میں قتل کیا جائے گا, قیدی بنایا جائے گا. ان الینا ایابہم, یقیناً ان کو مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر یقیناً ان کا حساب ہم لیں گے, اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جی